Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, आप लोग आगे आइए जरा। तो आज सवेरे हमने श्री पंडरपुर भू वैकुंठ धाम के महात्म्य का वर्णन किया। तो सेवा ये जो विषय है, ये हमारे भक्ति के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। सेवा का जो विषय है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और वास्तव में देखा जाए तो कलयुग में केवल दो युग धर्म हैं, एक है हरिनाम संकीर्तन और दूसरा है वैष्णव सेवा। और हरिनाम संकीर्तन करने से वैष्णवों की सेवा प्राप्त होती है, और वैष्णवों की सेवा करने से हरिनाम में रुचि प्राप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी हरिनाम संकीर्तन को शुरुआत करने के लिए भी सबसे पहले वैष्णवों की जरूरत होती है। जैसे हमने आज के सवेरे की कथा में वर्णन किया कि पुंडरिक के जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो कहाँ से हुआ? शुद्ध भक्त की मुलाकात से। पहले कुक्कुट स्वामी का दर्शन, फिर तीन शुद्ध भक्त देवियों का दर्शन और वार्तालाप, फिर कुक्कुट स्वामी का आशीर्वाद, इसके बाद में पुंडरिक का पूर्णतः हृदय परिवर्तन हुआ। तो हरिनाम की प्राप्ति के लिए भी पहले किसी भक्त को मिलना पड़ता है, उसकी कृपा से ही हरिनाम की प्राप्ति होती है, और हरिनाम की प्राप्ति होने के बाद में फिर वैष्णव सेवा का महत्व प्राप्त होता है। लेकिन कोई भी बात हो, शुरुआत वैष्णव होता है। ऐसा कोई भक्त यहाँ पर है कि जिसे किसी भक्त को मिले बिना भगवान के भक्ति का परिचय हुआ है? ना, आप बोलेंगे हमने प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी, किसी भक्त से नहीं मिले। प्रभुपाद की किताब और प्रभुपाद जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो साक्षात व्यक्ति रूप उनका दर्शन है। प्रभुपाद जी अपने शरीर को छोड़कर भगवत धाम में चले गए, फिर भी उनकी किताबों के रूप में वो उपस्थित है, अपना संग दे रहे हैं। तो अगर कोई किताब पढ़कर भक्त बनाए, इसका मतलब है प्रभुपाद जी के संग में आया है वो। अगर हम समझो सऊदी अरब में रहते हैं, कोई संग प्राप्त नहीं भगवान का, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनकी उनकी गोद में उनके साथ में बैठे हैं, उनके संग में बैठे। और शास्त्रों में ऐसे अनेक कथाएं हैं जिसमें ये वर्णन आता है कि सेवा करने से, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्राप्ति सेवक को होती है। आपको समझ में आया? हम किसी की सेवा करते हैं, हाँ, तो सेवा करने वाला व्यक्ति जो है वो जिसकी सेवा कर रहे हैं, मतलब कि सेव्य, उससे भी महान बन जाता है। इसका प्रमाण है शास्त्र में। जब कुंती देवी बालिक अवस्था में थी और शूरसेन राजा के घर में गोद लिया गया था उनको, तो वहाँ पर दुर्वासा मुनि आते हैं और पंच महाभूतों को अपने वश में करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। एक ग्रस्त राजा के महल में आश्रय लेकर बहुत दिव्य तपस्या करते हैं, और कुंती को शूरसेन जी दुर्वासा की सेवा में लगाते हैं, और कई दिन तक, कई महीनों तक, कई साल तक दुर्वासा मुनि ऐसे कठोर तपस्या करते हैं, और दिन रात कोई समय नहीं उसके लिए, ये चाहिए वो चाहिए, हर वस्तु जो भी चाहिए वो त्वरित जल्द से जल्द उनको देना है। तो अपने सेहत का, अपने नींद का, भोजन का कोई ठिकाना नहीं है। और बहुत समय के बाद में दुर्वासा मुनि पंच महाभूतों को वश में करने में सफल हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब तुरंत कुंती को बुलाते हैं, आ जाओ। और वो जो मंत्र बोलने से पंच महाभूत वश हो जाते हैं, देवता वश हो जाते हैं, वो मंत्र रेडीमेड कुंती को दे देते हैं। पांच मंत्र जो हैं एकदम, जिसने तपस्या उसके लिए नहीं की थी, केवल तपस्या करने वाले की सहायता की थी। तो तपस्या करने वालों को इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद वो पांच मंत्र, पांच यानी कि अनेक मंत्र उनको प्राप्त हो गए सभी देवताओं को वश करने के लिए, और तपस्या करने वाले की सेवा करने वाले को रेडीमेड मंत्र प्राप्त हो गए। तो कौन श्रेष्ठ हो गया बताओ, सेवक ही श्रेष्ठ हो गया। दूसरा एक प्रमाण है इसका, आप सब जानते हैं कि स्वयंभुव मनु की सुंदर कन्या थी देवाहुति, इतनी सुंदर थी वो कि देवता लोग छोड़कर, देवता विमान में बैठकर इनके महल के ऊपर के आकाश में मंडराते रहते थे उसका सौंदर्य देखने के लिए। और जब वो अपने छत पर बाल्य अवस्था में हाँ गेंद खेला करती थी तो उसके सौंदर्य को देखकर विमान से बेहोश होकर गिर जाते थे, इतना सौंदर्य था उसका। कभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखा उसने, हमेशा मखमल पे हाँ कारपेट पे मखमली चली वो, कभी भी पैर को कभी कंकड़ कांटे रास्ता कभी लगा नहीं उसको। पंच पकवानों से उनका लालन पालन हुआ पूरे राजशाही ठाट के साथ। लेकिन जब वो उपवर हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो स्वयंभुव मनु भगवान के शुद्ध भक्त हैं हाँ, स्वयंभुव मनु मतलब वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वयंभू ब्रह्म जो हैं उनके पुत्र हैं, वो गृहस्थ हैं, प्रजापति हैं और श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। तो आमतौर पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता तो किसी अपने योग्यता के राजा को देखता कि भाई मेरे कन्या को विवाह कर दूं, लेकिन ये इतने श्रेष्ठ भक्त थे कि वो सीधे जंगल में गए और जहाँ पर कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं उनके पास गए अपनी कन्या को लेकर, और अपनी कन्या को उनके वधू के रूप में प्रस्तुत किया। अभी कर्दम मुनि के पास में ना एक फूटी कौड़ी है, ना कोई महल है, झोपड़ी में रहते थे, कभी खुले में तपस्या करते थे, कभी कंदमूल खाते कभी नहीं खाते, कभी सोते कभी नहीं सोते, कोई सुविधा नहीं, कोई दास दासियां नहीं, कोई अलंकार नहीं, कोई पंच पकवान नहीं, कुछ नहीं। और वो राजा की कन्या इतनी क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य में पली हुई, अपने कन्या का हित देखकर स्वयंभू मनु उसका विवाह कर्दम मुनि से करते हैं, क्योंकि इसका विवाह अगर कर्दम मुनि के साथ किया जाए तो भगवत धाम में चली जाएगी। और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, अपनी संतान के लिए भगवत धाम का रास्ता क्लियर होना चाहिए, ऐसा उनको माहौल देना है कि वो भगवत धाम में जा सके। अभी आप देखिए, जब विवाह होता है तो विदाई कहाँ होती है, जंगल में, और कर्दम मुनि तपस्या में बैठे हुए हैं, विवाह के लिए भी क्यों ना हो, विवाह के लिए मान्यता देते हैं क्योंकि भगवान की जो दिव्य इच्छा है उसके आगे की वो देख सकते हैं कि भगवान का क्या उसमें प्लान है, इसलिए विरक्त होने पर भी विवाह करते हैं और फिर अपनी तपस्या में लग जाते हैं। और देवाहुति बेचारी राजकन्या इतनी महल में पली हुई, अभी नंगे पैर घूम रही है, दिन रात जग रही है, पति की सेवा कर रही है, पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तपस्या के लिए क्या आवश्यक है, दिन रात कई साल तक वो सेवा करती है, कई साल तक, यहाँ तक कि उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसका यौवन नष्ट हो जाता है, वो कमजोर हो जाती है, कृश हो जाती है। और काफी दिनों के बाद उसकी सेवा से कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या उसका वरदान देते हैं कि भगवान साक्षात तुम्हारे गर्भ में अवतार लेंगे, और साक्षात कपिल देव भगवान देवाहुति के गर्भ में जन्म लेते हैं। आप देख सकते हैं जिस भगवान की प्राप्ति के लिए वो तपस्या में बैठे हुए हैं, वो भगवान उनकी सेवा करने वाले के गर्भ में जन्म लेते हैं, तो कौन श्रेष्ठ हो गया बताओ। हाँ, यही समझने वाली बात है। उसी तरह से ये पंडरपुर का महात्म्य है, पंडरपुर में भी जो माता पिता भगवान के भक्त थे, दिन रात भजन करते थे, उनके लिए भगवान नहीं आए, उनकी जो सेवा कर रहे थे उनके लिए भगवान आए। तो ये सेवा का जो रहस्य है ये समझना बहुत जरूरी है। और हर समय हमें ध्यान रखना है कि हम किसी के सामने अगर झुकते हैं नम्रतापूर्वक और किसी की सेवा करते हैं तो हम कभी भी उसके उससे उसके उससे कम नहीं हो जाते. वी नेवर बिकम लोअर देन द पर्सन हुम वी आर सर्विंग. हम चाहते नहीं कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे बड़े हो जाएं, हम भगवान से बड़े हो जाएं. हाँ, ऐसा नहीं चाहते भगवान की सेवा करते समय. लेकिन निश्चित रूप से जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके सामने झुकते हैं, नम्र हो जाते हैं, उससे बड़े हो जाते हैं. इसलिए भगवान की भक्ति में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना. ये श्लोक उन्होंने कहा है कि सारे श्लोकों का ये मूल अलंकार है. वैष्णव समुदाय का, अगर वैष्णव समुदाय को एक शरीर माना जाए तो उस पर पहना हुआ ये अलंकार है नम्रता. और इसके होने से अगर हमारे अंदर कई दुर्गुण भी होंगे तो वो बहुत कम समय में नष्ट हो जाते हैं. और हमारे अंदर अगर भक्तिमय जीवन के अनुकूल कई सद्गुण होंगे और नम्रता के जगह उन गुणों के होने की वजह से अहंकार होगा तो हम कभी भगवत धाम नहीं जा सकते. अगर हम शास्त्र में पारंगत होंगे, बड़े दानी होंगे, बड़े विद्वान होंगे, बहुत सारे हमारे अंदर गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नम्र नहीं हैं और हम सेवक नहीं हैं तो वो सारे गुण मिलाकर भी हमें भगवान के रास्ते पर प्रगति करने में हमें सफल नहीं कर सकते. इसलिए हमारे अंदर दुर्गुण तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है. कई प्रकार के दुर्गुणों से हम लोग आदि हो गए उसके. जन्म जन्मांतर से हम लोग ऐसे इस भौतिक जीवन का भोग ले लेकर इतने आदि हो गए हैं, इतने कंडीशन बद्ध हो गए हैं कि हमें वैसे देखा जाए तो कोई स्कोप नहीं है. लेकिन एक स्कोप जरूर है हमारे लिए, वो है सेवा का. क्योंकि सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान के साथ में जुड़े रह सकते हैं. क्योंकि हम जानते हैं हम लोग जप कैसा करते हैं, सब जानते हैं ना. यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, तुरंत नींद आ जाती है, कब ख़त्म होगा, कब प्रसाद मिलेगा, कई प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं. बिजनेस चल रहा है हमारा देश विदेश में, क्या हो रहा है उसके मन में बिजनेस का, उसके कॉल बीच में आते रहते हैं. फिर कोई कॉल आया, कोई समस्या पैदा हो गई कॉल के अंदर, तो समस्या मन में चलती रहती है. कल क्या हुआ उसकी याद आती रहती है, आज क्या होने वाला है उसकी याद आती रहती है. कई प्रकार के विक्षेप है, आलस्य है, विक्षेप है. विक्षेप यानी कि डिस्ट्रैक्शन है, आलस्य यानी लेजीनेस है, और अटेंशन नहीं है उसके अंदर, ध्यान नहीं है उसके ऊपर. तो जब भी एक भगवान के साथ जुड़े रहने का बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, कोई डाउट नहीं है उसके प्रति. लेकिन हम महाराज जप करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए हम बार बार उसमें फेल हो जाते हैं. प्रभुपाद जी ने कहा था कि मुझे 40 साल लगे इस जप की प्रक्रिया को परिपूर्ण करने के लिए. इट टुक मी 40 ईयर्स टू परफेक्ट माई प्रोसेस ऑफ चैंटिंग. और प्रभुपाद जी तो पहले से ही सिद्ध आत्मा थे, हम तो वैसे भी नहीं हैं. तो हमको प्रयास तो करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं, छोड़ देना नहीं है इसके लिए. लेकिन ऐसी विक्षेपित, मतलब मन जिसका भटका हुआ है, ऐसी अवस्था में भी एक ऐसी चीज़ है जो हमको बराबर 100% भगवान के साथ में जुड़े रख सकती है, और वो है सेवा. जैसे अभी कोई खिचड़ी बना रहा है, हाँ, आप खिचड़ी बनाते हुए यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. आपका ध्यान खिचड़ी में होना चाहिए, तब खिचड़ी अच्छी बनेगी. अगर ध्यान आपका यहाँ हुआ होगा तो खिचड़ी आपको फेंक देनी पड़ेगी, क्योंकि जल जाएगी वो. लेकिन जब हमारे सारे इंद्रिय और मन मिलकर, बुद्धि लगाकर हम लोग कुछ सेवा करते हैं ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारा मन लगेगा उसके अंदर. अगर आप ऐसे बैठकर हरे कृष्णा कहने लगे तो हो सकता है, क्योंकि हमारा श्रवण और हमारा वाचा ही एंगेज है, इसलिए हमारा मन यहाँ वहाँ भटक सकता है. और उसके लिए अभ्यास की भी ज़रूरत है, अभ्यास भी काफ़ी कम है हमारा. लेकिन सेवा ऐसा एक माध्यम है. अभी हमारे प्रभु जी ऑर्गेनाइज करते हैं कैंप को, जब वो कैंप की व्यवस्थापन में बैठ जाते हैं तो और कुछ सूझता नहीं है जब तक व्यवस्थापन पूरा नहीं होता है. तन मन सारी इंद्रियां तुरंत लग जाती है उसके अंदर. अभी आप भी कीर्तन की सेवा में गए थे, जब कीर्तन करते हुए कुछ बात भी बाकी कुछ याद आ रहा था क्या आपको? नहीं आ रहा था ना, क्योंकि सारे हमारे इंद्रिय लगे हुए हैं उसके अंदर. नाच भी रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, गा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं. हाँ, तो इस तरह से सेवा ऐसा एक क्रिया है जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है. क्या कहते हैं? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुत्तम. जब सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक हमारा मन लग जाता है और उत्तम भक्ति होती है. तो हमें पुंडरीक के उदाहरण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुबह हमने विस्तार में कहानी बताई। एक तो यह है कि पुंडरीक एकदम पतित जीव था, लेकिन फिर भी जब उसे शुद्ध भक्तों का संग मिला उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो हमें भी हमेशा शुद्ध भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वपु से या वाणी से, चाहे उपदेश के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत संग से। अगर शुद्ध भक्त चले भी गए हैं भगवत धाम, फिर भी उनकी वाणी को या उनकी किताबों को पढ़कर उनके संग में हम रह सकते हैं, अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो एक तो सीख ये हुई, दूसरी ये हुई कि जब उनका उनको ऐसा संग प्राप्त हुआ, हाँ, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। सर्व सिद्धि कब होती है? वो केवल संग होने से नहीं होती है, संग होने के बाद में आप क्या करते हो, संग होने से जो परिवर्तन हुआ उसके परिणाम के स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार वो सर्व सिद्धि होती है। केवल शुद्ध भक्त के प्रवचन में बैठे और जाके घर में टीवी देख लिया, तो परम शुद्ध भक्त भी आपके संग में आएगा तो भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा आपका, क्योंकि कृति इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो हम लोग कृति करते हैं उसके बाद में परिवर्तन का मतलब क्या, पहले एक कृति करते थे, आज भी वही कृति कर रहे हैं, तो परिवर्तन कहाँ आ गया? परिवर्तन भाव के अंदर आ गया। पहले वो कृति जो है वो किसी और कारण के लिए करते थे, अभी वही कृति जो है वो भगवान के लिए करते हैं। पहले भी गृहस्थी को संभालते थे लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए करते थे, और अभी भी गृहस्थी को संभाल रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा में संभाल रहे हैं। पहले भी डॉक्टरी करते थे लेकिन स्वयं के लिए करते थे, आज भी डॉक्टरी कर रहे हैं लेकिन परमार्थ के लिए, भगवान की सेवा में कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो साधु के संग में आता है, वो भाव का परिवर्तन जो है ना एकदम हाईएस्ट लेवल पे होता है। वो जब वहां पर टॉप लेवल पे परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के विचारों में और व्यक्ति के कृतियों में, व्यक्ति की आदतों में और चरित्र में बदलाव आ जाता है। तो पुंडरीक ने केवल जब सुना कि अरे तीन तीन देवियां भी जो प्रमुख नदियां हैं वो अपने जल के द्वारा इस आश्रम को साफ करके अपने तेज को दोबारा प्राप्त करती हैं, तो वहां पर उसने कथा छोड़ के वाह वाह बहुत बढ़िया कथा है, छोड़ नहीं दिया उसको, तुरंत उसका जो तात्पर्य है उसको स्वीकार किया कि तात्पर्य है कि मुझे भी सेवा करना चाहिए, जो सेवा करने में मैं चूक गया, जिस सेवा के बदले में मैंने अपराध किया, सुधारने का अभी मौका है, अभी मैं मर नहीं गया, वो जिंदगी बाकी है, अभी भी मेरे गलतियों को सुधारने का मौका है। तुरंत माँ बाप को ढूंढ के निकाला उसने और उनकी सेवा करना आरम्भ किया। उसका भाग्य था, उसके माता पिता भक्त थे, सबका शायद भाग्य नहीं होगा, कई भक्तों को घर से विरोध होता है भक्ति करने के लिए बहुत विरोध होता है, क्यों हरे कृष्ण में जाते हो, भारत में कोई गुरु नहीं क्या, कोई भारतीय संस्था नहीं क्या, भारत तो खान है भक्ति संप्रदायों की, को विदेशी संप्रदाय की जरूरत क्या है, और ये लहसुन प्याज नहीं खाना, ये चाय कॉफी नहीं पीना, ये कौन सा धर्म है, चाय पीने के बाद धर्म नहीं होता है क्या, ऐसे कई सारे घर में प्रश्न होते हैं। और अभी समय है कि आपका ये सब करने का, अभी तो जवानी के दिन है आपके, आप पढ़ाई करो, अच्छी तरह कमाई करो, अच्छी तरह गृहस्थ चलाओ, और 100 रुपया कमा के 90 रुपया दान दो, लेकिन 100 रुपया पहले कमाओ ये सब हमको बताया गया था, इसलिए मैं वही दोहरा रहा हूँ, कोई नया नहीं दोहरा रहा हूँ लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको बताया था कि आप भक्ति में लगे रहो, सब लोग धीरे धीरे भक्ति में आ जाएंगे, और ये भी सत्य होते हुए हमने देखा है। तो शुद्ध भक्त का जो वाक्य होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। अरे प्रभुपाद जी ने उधर भारतीय विद्या भवन के स्टेप्स पर खड़े होते हुए कहा, डंडा उठा के, यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। हमको लगा कि अरे क्या ऐसे कैजुअली बोल दिया होगा, उनको क्या सब जगह मंदिर होना चाहिए ऐसा लगता है ना लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे बिल्कुल ऐसे बाय द वे नहीं कह रहे थे, उन्होंने एकदम फर्मली डंडे को उठाकर उस गली में दिखाया, यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। और आज वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर खड़ा है जो पूरे विश्व को प्रेरणा दे रहा है, वहाँ के भक्त और वहाँ के जो कार्यकलाप हैं सब कुछ मिलकर। तो शुद्ध भक्त जो बोलते हैं ना वो हमेशा सत्य होता है। और प्रभुपाद जी ने कहा भी था कि अगर आप 10 साल तक रोज मंगल आरती अटेंड करोगे तो आप भी जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। मैं भी नहीं कर सकता रोज मंगल आरती अटेंड, लेकिन तात्पर्य यह है कि शुद्ध भक्त जो कहते हैं ना वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है। भगवान को भी उन शब्दों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे शुद्ध भक्त ने बताया यहाँ मंदिर होना चाहिए, तो भगवान ने कहा है होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, क्योंकि भगवान भी कैसे है ना, भगवान भी परम सेवक है। सब लोग भगवान की सेवा करते हैं और भगवान किसकी सेवा करते हैं, अपने भक्तों की। ये इंटरनल कॉम्पिटिशन है, ये पुरखों के ज़माने से सनातन काल से ये चलते आ रहा है कि भक्त भगवान की सेवा की कोशिश करते हैं और भगवान अपने भक्तों की सेवा की कोशिश करते हैं। और भक्त जो है वो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित है, और भगवान कैसे हैं, अपने भक्तों के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। सुबह हमने वो कहानी का जिक्र किया था ना, चित्रकेतु आकाश में उड़ के जा रहे हैं और शंकर जी महाराज अपने सुंदर पत्नी को लेकर साधुओं को सन्यासियों को विरक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, तो चित्रकेतु राहस पड़ते हैं, पार्वती शाप देती है उनको। तो चित्रकेतु बड़े नम्रता से रथ से हवाई जहाज से उतरते हैं और दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो शिव जी क्या बोलते हैं उनको, वो हमने सुबह नहीं बताया था। शिव जी बोलते हैं देखो ये भक्त है भगवान के। हाँ, स्वर्गेशु अपि नरकेशु तुल्य, कुछ श्लोक है उसका, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि भगवान के भक्तों के लिए नरक और स्वर्ग एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। आपने उनको शाप दिया राक्षस बनने के लिए, वो अभी स्वर्ग में थे देवता के रूप में, अभी आपने उनको शाप देकर राक्षस बनाया, अभी वो पता नहीं कौन से कुल में जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने आकर दंडवत किया आपको, धन्यवाद किया, माता आप जो कह रही वो मेरे लिए वरदान है। आपको लगता होगा कि वो शाप है, लेकिन आपके श्री मुख से जो वचन आप उच्चारण कर रहे हैं वो मेरे लिए वरदान ही वरदान है, धन्यवाद, आपने मुझे कहा कि आप राक्षस बन जाओगे। तो शिवजी महाराज के देखो ये वैष्णव ऐसे होते हैं, इनको आप शाप दो वरदान दो, नरक में रखो स्वर्ग में रखो, इनके लिए सब कुछ सही है। तो ऐसे भक्त जो है वो आगे जाकर इंद्र के हाथ से उसका वध होता है, लेकिन फिर भी इंद्र को बोध देते वो, इंद्र को कितनी बड़ी शिक्षा दिया उसने श्रीमद् भागवत में, रुद्रासुर बन गए वो। हाँ, लेकिन शिवजी महाराज पार्वती को बता रहे हैं देखो कितने बड़े भक्त हैं ये, कोई आएगा बोलेगा सॉरी माफ़ करना मैंने ऐसे ही गलती से बोला, प्लीज अब कुछ शाप देना कुछ कंसेशन देना, फिर वो बोलती कि भाई ठीक है द्वापर के अंत में कृष्ण आएंगे तो उसके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग गर्गा संहिता में, ऐसे कितनी कथाएं हैं, कितने राक्षस लोगों को शाप मिलता है और फिर वो एक अरिष्टासुर बनता है, एक कालिया शाप बनता है, कोई बकासुर बनता है, कोई अगासुर बनता है, कोई पुतना बन जाती है, कितनी सारी कथाएं आती है। हर एक व्यक्ति ने उस शाप मांगा है कि वो भक्त नहीं थे वो, और भक्त को जब शाप मिलता है तो कभी उत्साह नहीं मांगता है वो, उसके लिए शाप और वरदान एक ही है। क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं वो ये सब दुनिया के लाभ और नुकसान के विचार के परे होते हैं, वो भगवान की श्रद्धा पर जीते हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखता है ना उनको पता होता है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे इंद्रियों को वो शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मेरे आत्मा के लिए वो अच्छा ही है। कष्ट आते हैं भक्तों के जीवन में, हाँ पांडवों को जंगल जाना पड़ा, द्रौपदी को वस्त्र हरण का इतना मुसीबत झेलनी पड़ी, प्रहलाद को इतना जीवन को नष्ट करने का अनंत प्रयास जो पापा ने किया उसके उसको सहना पड़ा, किस भक्त को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन कभी भी ऐसा वर्णन नहीं आता है कि प्रहलाद ने कंप्लेंट किया, ध्रुव ने कंप्लेंट किया, पांडवों ने इतना वनवास देने पर कृष्ण भगवान को कंप्लेंट किया, कभी भी नहीं। कुंती ने वर्णन इतना कष्ट भोगने के पर भगवान को कंप्लेंट किया, ऐसा आया कोई वर्णन? उल्टे कुंती भगवान को बोलते हैं कि ये सब दुख दिया ना आपने मुझे, वो बार बार आने दो। अरे अजीब बात है ये, इतना कष्ट देने पर भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो भक्त हैं, वो किसी भी वस्तु को किसी भी घटना को जो है वो बाहरी दृष्टि से देखते नहीं हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। और जब कोई भक्त बन जाता है तो अपने आप उसके अंदर ऐसी चेतना उत्पन्न होती है कि जिससे वो समझता है कि जो भी हो रहा है उसके अंदर भगवान का हाथ है, इसके अंदर भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा कभी भी जीव के लिए कल्याणकारी ही होती है, कभी भगवान के इच्छा जो है वो जीव के लिए विनाश के लिए कारण नहीं होती है, नुकसान के कारण नहीं होती है। भगवान की इच्छा, भगवान अपनी इच्छा से भक्तों के जीवन में जो भी घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं वो सारी घटनाएं भक्तों के कल्याण के लिए होती है। थोड़ा समझना मुश्किल होता है, जब कष्ट होता है, पीड़ा होती है, यातना होती है, तो फिर कभी हम चीख सकते हैं, पुकार सकते हैं चीख से, कोई बात नहीं उससे, लेकिन उसके बाद भी भगवान का भक्त जो है वो धन्यवाद देता है भगवान को। और ब्रह्मा जी दशम स्कंध में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कष्ट में भी मुझे प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है और कहता है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे जीवन में ऐसी घटना को भेज रहे हो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में दावा करता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो संकट आने पर भी मुझे धन्यवाद देता है और मेरा वंदन करना नहीं छोड़ता है, वो मेरे धाम का, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो भगवत धाम के प्रवेश का हकदार बन जाता है, सदाय भाक। वो भक्त के कृपा से प्रवेश नहीं करता है, बाय द वे इसको जरा ले लो, वशीला लगा दिया नहीं, ऐसा भक्त जो है वो अपने हक से हकदार बन के भगवत धाम में प्रवेश करता है। ऐसे स्वयं स्वयंभू ब्रह्मा कृष्ण के विष्णु के प्रथम पुत्र जो हैं, जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, वो ऐलान कर रहे हैं दशम स्कंद के अंदर। इसलिए भक्त जो है वो उन पर आने के संकट के बाद भी धन्यवाद दे सकते हैं भगवान को। तुकाराम महाराज पर भी ऐसा प्रसंग आया था, एक नहीं कई प्रसंग आए उनके ऊपर। एक प्रसंग था कि इन्होंने इतनी मेहनत से अपने अभंग लिखे थे जन कल्याण के लिए, आने वाली हजारों पीढ़ियों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने सुंदर 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 सादगी वाले मराठी भाषा में लोगों को समझ में आए, अनपढ़ लोगों को भी ऐसे सुंदर अभंग लिखे थे जिसमें भगवद्गीता भागवत के सारा सार समाया हुआ है, सिंपल सी भाषा में जो गांव वाले जो चक्की पीस रहे हैं घर में उनको भी समझ में आता है, और लोग गा भी रहे हैं, समझ बूझ के उसको गा रहे हैं रोज। तो जो द्वेषी लोग थे वहाँ के तथा कथित जो धर्म के अधिकारी थे, धर्माधिकारी, वो आते हैं और कहते हैं कि ये तुकाराम सबको भ्रष्ट कर रहा है, ये सबको बहका रहा है, ये ढोंगी है। तो उसका कोर्ट कचहरी होती है, उसको बुलाया जाता है और क्या निर्णय करते हैं कि तुमने जो भी कुछ लिखा है उसको इंद्रायणी में फेंक दो। अभी आप सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम मेहनत करते हैं, कुछ एक आधी किताब लिखते हैं, कितने साल के बाद मेहनत करके, और फिर उसको कहा जाए कि नदी में फेंक दो, उसको कायदे से बताया जाता है, कितना दुख होगा हमको। या हमने कहीं घर बनाया बहुत मेहनत करके, बाद में बताया कि इल्लीगल है, इसको तोड़ दो। होता है ना ऐसे, आपका FSI बढ़ गया है, इसको तोड़ दो, पहला मंजिल तोड़ दो, इल्लीगल है वो, कितना दुख होता है हमको। तुकाराम महाराज ने सोचा अरे भगवान की क्या इच्छा है पता नहीं, और बहा दिया पूरा ग्रंथ को। 13 दिन उपवास किया देव के नदी के किनारे इंद्रायणी के। 13 दिन के बाद में इंद्रायणी देवी प्रकट हुई। आपको लगेगा कि वो गीला किताब लेके प्रकट हो गई कोई, नहीं, पूरा सूखा किताब, गाथा कहते हैं उसको, तुकाराम जी अभंग गाथा, उसको लेकर प्रकट होके तुकाराम को अर्पण किया उसने। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि तुकाराम की गाथा जो थी उसके बाद में करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाशित हो गई। इतना जब चमत्कार हो गया ना, तो पहले जितना प्रसिद्धि थी उस गाथाओं की उससे करोड़ों गुना गाथा प्रसिद्ध हो गई और दूर दूर तक फैल गया उसका। अब इतना चमत्कार होने पर आपको लगेगा ना क्या है क्या उस गाथा में, लोगों को पढ़ने तो जरा। कोई किताब के ऊपर कोर्ट केस होता है कि इसमें कुछ आक्षेपार्ह विधान लिखे गए हैं, इसमें कोई सही विधान नहीं गलत है, कोई इसने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए, तो उसके बाद में वो किताब बहुत ज़्यादा बिकती है। तो कुछ कुछ लोग जानबूझ के आप अपने लोगों को बोलकर उसमें कुछ केस चलाते हैं ताकि पेपर में खबर आ जाए वो। तो तुकाराम ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई स्टंटबाजी नहीं किया, अपने लोगों को बुलाकर वो ऐसा कुछ नहीं किया, देवी को ब्राइब नहीं दिया था उन्होंने। तो संत लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर ये संकट जो आ रहा है, मेरी जो बदनामी की जा रही है, मेरे लिखा हुआ जो इतना मूल्यवान अभंग है उसको पानी में फेंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसमें भी भगवान का कोई कल्याणकारी प्लान है मेरे लिए, और विश्वास के साथ में बैठ गए वहाँ उपवास करने के लिए। और 13वें दिन जो प्रकट हो गए तो जनता ने देखा, ऐसा नहीं कि खाली प्राइवेटली उनके लिए प्रकट हुई, जनता ने देखा उनके अभंग गाथा जो है सूखी सूखी वैसे ही उनके हाथ में वापस आ गए। वो देखकर जिन्होंने वो सब किया था वो धर्माधिकारी चरणों में गिरे उनके, और तुकाराम ने ऐसा नहीं कहा कि अभी आए हो मारो इनको, सब लोगों को बोला मारो उनको, ऐसा नहीं किया उन्होंने, उनका कोई बात नहीं। हरिदास ठाकुर भी ऐसे थे, हरिदास ठाकुर को तो 22 मार्केट के जगह पर हाट कहते हैं बाजार हाट, ऐसे जगह पर ऐसे चाबुक से मारा गया कि 2 चाबुक खाने के बाद व्यक्ति मर जाता है, ऐसे चाबुक से उनको 22 जगह मारा गया। तो उसके बाद में वो मारने वाले लोग बोले अरे आप मरे नहीं, हमको मारने का आदेश दिया था आपको, हमें उम्मीद थी कि 2-3 मार्केट के बाद आप मर जाओगे, ये 22 मार्केट पूरे हो गए, मार्केट भी खत्म हो गया, अभी कहाँ मारे आपको, अभी हमको मरना पड़ेगा, बादशाह हमारा कत्ल करेगा। तो हरिदास जी कहते अच्छा आपने पहले नहीं बताया मुझे, मैं भी मर जाता हूँ। बैठ गए ध्यान के, हाँ अपने योग बल से तुरंत निश्चेष्ट हो गए, मरने गए, मतलब निश्चेष्ट का मतलब जैसे मानो मर गए समझो, योग योग निद्रा में तुरी अवस्था में गए वो, बड़े खुश हो गए वो, बोले फेंक दो उसको नदी में, फेंक दिया नदी में उसको। कुछ दिन बाद में वो जब उनकी क्या कहते हैं उसको अति आनंद की जो दिव्य अवस्था है, एक्स्टैटिक ट्रांस कहते हैं उसको, तुरिया अवस्था, उससे जब वो जब बाहर आ गए तो चलते चलते फिर गांव आ गए, फिर गांव में हरे कृष्णा करते करते आ गए। तो वो नवाब, उसे नवाब को और उस काजी को सब खबर मिली, अरे वो तो जिंदा है, क्योंकि तो उन्होंने चैलेंज दिया था, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा हरिनाम तुमको हमसे कैसे बचाएगा, ऐसे तुच्छित तुच्छ भावना से कहा था उनको, अगर तुम्हारा हरिनाम तुमको बचा सकता है तो फिर मानेंगे हरिनाम में कुछ बल है। तभी हम और आप अगर इस अवस्था में होते तो हम सोचते क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भगवान, हमने आपका नाम लिया और हमको चाबुक ओढ़े जा रहे हैं, वो भी मरने के लिए, क्या क्या चाहते क्या है भगवान आप, हम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, मुसलमान होकर भी हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान आप हमें चाबुक से मारने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने सोचा इसमें भी कुछ भगवान का कृपा है। तो जब वो वापस जिंदा होकर आए तो क्या हुआ, तो नवाब और काजी चरणों में गिर गए, दो मारने वाले जल्लाद थे ना दो, वो भी चरणों में गिर गए, बचाओ माफ करो, अभी हम चाहते हैं कि आप सच्चे रूप में अल्लाह के पीर हो, हम अभी विश्वास हो गया है कि आप अल्लाह के फरिश्ते हो। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने ना मेरे इस कानों से बहुत ज़्यादा भगवान के नाम के विषय में निंदा सुनी थी, इसलिए मुझे दंड मिला, ये सही मिला, ज़्यादा नहीं मिला, बहुत कम दंड मिला, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा भगवान के नाम की निंदा सुनी है इसी कानों से, इसलिए मुझे ऐसा मिला। लेकिन हकीकत में क्या हुआ पता है आपको, हकीकत में जितने हरिदास ठाकुर हरिनाम के प्रचार के विषय में संत के रूप में जितने मशहूर थे उससे करोड़ों गुना अधिक वो मशहूर हो गए, और उससे करोड़ों गुना उनके हरिनाम का प्रचार जो है सब जगह फैल गया। तो भगवान जो करते हैं ना वो उसमें उनका दिव्य योजना होता है, उस भक्त के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। और भक्त जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है कि भक्त जो है भगवान के ऐसे दिव्य योजनाओं को सफल करने में अपने आप को अर्पण कर लेते हैं, बोलते हैं ये लो मुझे मेरा उपयोग कर लो आप, मुझे कष्ट देना है क्या करना है, पिटवाना है, मेरा बदनामी करना है, कोई बात नहीं, ये मैं आपका हूँ, आप जो चाहे करो, आपका जो हेतु है उसको साध्य करो आप। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। क्यों जिंदा रहे हरिदास ठाकुर 22 मार्केट तक क्यों जिंदा रहे, क्योंकि जैसे ही पहले मार्केट प्लेस में उनको मारा गया तब जाकर उसी समय वो मार खाते हुए जो मार रहे थे उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान इनको आप माफ कर लो। उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहां पर, कृष्ण भगवान वहां पर चक्र लेकर प्रकट हो गए थे उन दोनों को मारने के लिए जो उनको मार रहे थे, लेकिन ये करुणा के वश जो प्रार्थना कर रहे थे इसलिए भगवान के उंगली से चक्र निकला ही नहीं बाहर। ये कैसे मालूम पड़ा हमको, जब महाप्रकाश की लीला हुई तब भगवान ने स्वयं बताया कि उस समय पर मैं चक्र लेकर वहां प्रकट हो गया था, लेकिन तुमने इतनी करुणा से उन दोनों के लिए प्रार्थना की थी कि मेरा चक्र मेरे हाथ से उनका सर काटने के लिए निकला ही नहीं, फिर मैं विवश हो गया कि ना मैं इन दोनों को मार सकता हूँ ना मैं बचा सकता हूँ, करूँ क्या फिर मैं, तो मेरी कांति जो है तुम्हारे ऊपर ढक ली और तुम्हारे ऊपर जो सारे वार हुए जो हमले हुए चाबुक के वो सब मैंने मेरे पीठ पर लिए, लो हरिदास देख लो। ऐसे करके महाप्रभु चैतन्य टर्न हो जाते हैं और क्या देखते हैं महाप्रभु के पीठ पर, अनंत वार, अनंत घाव, अनंत लाल रंग के निशान, जितनी बार मारा होगा चाबुक से उतने सारे निशान। तो हरिदास बेहोश हो जाते हैं, अरे भगवान क्या किया आपने मेरे लिए, मैं तो तुच्छ यवन हूँ, मेरा जन्म इतना हीन है, मेरे पास क्या पुण्य है क्या और क्या ऐसी बात है जिसने मेरे लिए आपने इतना कष्ट सहन किया। लेकिन भक्त अपने आप को नम्र मानता है, तुच्छ मानता है, पतित मानता है, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि उनका भक्त जो कितना समर्पित है। तो ऐसे है हमारे भगवान और ऐसे भगवान के भक्त, और उनकी लीला जो है अपरंपार चलती आती है, इतने निष्काम होते हैं भक्ति, इतना सारा सहन करने के बाद भी उनका क्या विचार है कि मैं इतना तुच्छ हूं, मेरे लिए क्यों आपने इतना घाव सहन किया? मर जाता है हरिदास, क्या फर्क पड़ता दुनिया को? ऐसे कई भक्त हमारे आपके संगत में, आपके पार्षदों में यहाँ भी मौजूद है, और मतलब वहाँ महाप्रकाश की लीला चल रही थी ना, वहाँ पर सभी महान भक्त एकत्र हुए थे। इतने सारे भक्तों के अंदर एक हरिदास मर चुका होता तो क्या होता? भगवान आपने ऐसा क्यों किया? अगर कोई समझा होता कि जिसको 22 मार्केट में मारा गया तो मार्केट में मरना चाहिए था, 22 मार्केट में जिंदा रहा, फिर बेहोश हो गया, फिर नदी में फेंका गया, फिर जिंदा होकर वापस आया, तो आप और हम लोग कितना गर्व करते, देखो मैं कितना महान हूँ। ऐसा भी क्यों होता है क्या? देखो मेरे जैसा महान कोई नहीं है। इतना होने पर भी नम्रता और बड़ी उनकी, क्योंकि सब चीज़ को भगवान की कृपा ही मानते हैं, वो अपना कुछ समझते नहीं उसके अंदर। तो भगवान ने उनको बोला, हरिदास मांगो मांगो मांगो, मुझसे कुछ मांगो, आज मैं देने के लिए बैठा हूँ, मैं देना चाहता हूँ। तो बोले, क्या मांगो आपसे? कुछ नहीं चाहिए मुझे। श्रीधर कौलविज ने भी ऐसा ही बोला कि क्यों आप मुझे टेम्प्ट कर रहे हो, क्यों मुझे आप मोहित कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी केवल भक्ति चाहिए, आपके भक्तों की सेवा चाहिए बस। ऐसे भक्त निष्काम होते हैं। तो इसी निष्काम भाव पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। आप देखिए यहाँ पर पुंडरीक के सामने भगवान खड़े हैं। हाँ, आप जस्ट सोच लो, अभी आपके सामने अभी समझो भगवान प्रकट हो गए, एक दो मिनट के सोच लो कोई बात नहीं, सोचने में कोई नुकसान नहीं है। समझो आपके सामने साक्षात भगवान खड़े हो जाते हैं और आपको बोलते हैं, जो चाहे मांग लो। तो आप पूरा कागज और पेन लेके बैठ जाएंगे, ये चला कितना दिन से कितना बाकी, इच्छा है लिख लो, कहीं भूल ना जाओ, सिस्टमेटिकली उसको बोलो, थोड़ा सा परिवार के लिए, थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा शरीर के लिए, थोड़ा इसके लिए, जॉब के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बच्चों के लिए, पूरा डिवाइड करके उसको ऑर्गेनाइज करके पूरा प्रस्तुत करो। अभी है कि मौका है, आगे मौका नहीं आएगा, आएगा पता नहीं कितना बड़ा, हम लोग ऐसे सोचने बैठेंगे। और प्रहलाद को देखो, ध्रुव के देखो, पुंडलिक को देखो, इतने दिन माता पिता की सेवा कर रहे हैं, राज भगवान बोल रहे हैं, पुंडलिक मांग मुझसे, क्या चाहिए तुझे बोल। तो वो कहते हैं, क्या मांगू, आप स्वयं देने वाले जो है वो सामने खड़े हैं, वही मेरा वरदान है, जो वरदान देने वाले हैं वो मेरे सामने आ गए हैं, मैं उनके पास नहीं गया था ना, वो थोड़ी उनके पास गए थे, आप स्वयं आए हो द्वारका छोड़कर, यही मेरे लिए वरदान है। और भगवान व्याकुल है देने के लिए, जो मांगा वो देने के लिए व्याकुल है, लेकिन वो क्या बोलते, देखो हे भगवान मैं वर नहीं मांगता, क्योंकि जिन विषयों के बारे में मुझे वरदान मांगना हो समझो, वो सारे विषय जो है वो क्षणिक है, नश्वर है। हा? क्या बोलते हो, न याचे हम वरान देवा विषया क्षण भंगुरान, ये बहुत टेम्पररी चीज़ें हैं सब, जिनको मांगना मांगते हैं लोग और आप मांगने की अपेक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप कल्प वृक्ष हो, सब कुछ देने वाले व्यक्ति मेरे सामने खड़े हो, तो मैं आपके सामने इस तुच्छ चीज़ों को क्यों मांगू? आप ही मेरे लिए वरदान है और मैं समझता हूँ कि आप ही मेरे लिए वरदान है, साक्षात व्यक्ति रूप आप मेरे सामने खड़े हैं। फिर कहते हैं कि आप बहुत दुर्लभ है और आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए मैं आपको ही वर के रूप में मांगता हूँ। तो क्या बोलते हैं वो, सुंदर हास्य जिनका है आपका, जिनकी सुंदर दृष्टि है आपकी, और सबको इच्छित वर देने वाले आप हैं, वो आप यहीं निवास कीजिए। तो लोगों को लगे कि देखो पुंडलिक कितना स्वार्थी है, हाँ उसके लिए भगवान आए थे, पूरी कथा उसके ऊपर बनेगी, अभी आगे जाकर उसका ही प्रकाश होगा, उसके ही ख्याति बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी। देखो भगवान को बोल रहा है यहाँ पर खड़े रहो ताकि लोग समझे कि देखो पुंडलिक कितना महान भक्त था, उसके लिए भगवान आए थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था, ये वैष्णव क्रिया मित्रा विज्ञान भुजा है, वैष्णव लोग क्या सोचते हैं ना वो किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल है समझना। लगता तो ऐसा कि बहुत स्वार्थी हैं, बहुत सोच विचार से अपने लिए योजना बनाते रहते हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी योजना नहीं बनाते हैं। वो भगवान को बता रहे हैं कि आप इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पापी के लिए, अपराधी व्यक्ति के लिए आप अपना द्वारका नगरी छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे झोपड़ी में आए, मेरे लिए आपने ईंट पर खड़ा रहकर इंतजार किया, कितने दयालु हैं आप। इसलिए ये आपका जो रूप है, जो आपने कमर पर हाथ रखकर आप इंतजार में खड़े हैं मेरे, कितने कनवाड़ो, मतलब कितने करुणामयी हैं आप, वो लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि आप यही खड़े रहिए, ऐसी अवस्था में जिस रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए हो, उसी रूप में कमर में हाथ रखते हुए आप खड़े हो जाइए, ताकि आने वाले युगों युगों तक सभी जनता देखती रहेगी कि कैसे भगवान है हमारे, इतने कृपालु भगवान है हमारे कि पतित जीव जैसे पतित जीव के लिए भी सब कुछ छोड़ के आ गए यहाँ पर। ये पुंडलिक की कॉन्शियसनेस है। सब प्राणी मात्र जो है आपके हृदय के अंदर भक्तों के विषय में जो प्रेम है उसका दर्शन कर सके अगर आप यहां खड़े रहेंगे तो। मुझ जैसे पतित जीव के लिए आप यहां उपस्थित हो गए हो। जीव घोर संसार में डूबकर इतना दुखी हो गया है, उसके त्राता रक्षणकर्ता के रूप में आप यहां प्रकट हो गए हो, तो आपके चरण कमलों की प्राप्ति लोगों को हो सके इसलिए आप यहां पर रहो। चरण कमलों की प्राप्ति लोगों को होती रहे इसलिए यहां पर पुंडलिक भगवान के, पंडरपुर के भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकते। बाकी विश्व में किसी भगवान के जो स्थापित प्रतिष्ठापित मूर्ति है, तिरुपति बालाजी है, रंगनाथ जी है, कितने भगवान हैं, उनको चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते आप। अभी जगन्नाथ जी का आलिंगन भी बंद हो गया, आपने सुना होगा ना। हाँ, पहले जगन्नाथ जी आलिंगन देते थे, हम लोग कथा में बताते थे सबसे ज़्यादा दयालु तो जगन्नाथ भगवान है। साल में एक बार ना देखते हैं मलच्छ, ना देखते हैं यवन, ना देखते हैं पतित, सबको आके गले मिलते हैं, लेकिन इस साल नो गले मिलना बंद हो गया। अभी वो अभी पंडा लोग लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी इच्छा है कि ये बहुत पुरानी प्रथा है तो भगवान का दया का ये एक प्रमाण है तो उसको दोबारा चालू करना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी, अगले साल में नव कलेवर में, तो नव कलेवर में गले मिलेंगे नहीं मिलेंगे या कल अगले साल देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैंने पढ़ा हुआ है शास्त्र में कि यहाँ पर भी विट्ठल भगवान भक्तों को आलिंगन दिया करते थे, कुछ समय बाद वो बंद किया गया और अभी चरणों को स्पर्श करने को मिलता है। और ऐसे कहते हैं कि भगवान के चरणों पर हाथ लगा लगा कर चूम चूम कर वो पैर भी अभी भगवान के घिसने लगे हुए हैं, इसलिए विचार चल रहा है कि उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि कितने लोग लाखों 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 लोग एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी किसने ऐसा हाथ लगाया दंडवत के लिए, सर लगाया, चुम्मा लिया उनका, तो परिणाम तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पुंडरीक की कृपा है कि हमको ये चरण प्राप्त हैं। हमने तो कोई तपस्या नहीं किया पुंडरीक जैसा, हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी विट्ठल भगवान जो है जो अपना करुणा का स्वरूप है उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और उन्होंने ये भी वरदान मांगे, आगे देखिए कि ये क्षेत्र जो है जहाँ पर आप विराजमान हो गए अभी, वो सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र बने, सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ बने। जो ज्ञान विज्ञान से रहित है, जो मूर्ख है, जो पापी है, उन सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हो, और मेरा कोई और इच्छा नहीं है। अभी ये नारद मुनि भी ऐसे ही है, उन्होंने कृष्ण बलराम को सुभद्रा को ऐसे विचित्र अवस्था में देखा, महाभाव की अवस्था में देखा, अरे हाथ ऐसे लटके हुए हैं, सुभद्रा के हाथ तो हाथ भी नहीं है, पैर अंदर चले गए, हाथ भी अंदर चले गए, भगवान के हाथ बाहर है पैर अंदर चले गए, बड़ी बड़ी मुस्कान है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, भाव विभोर बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। उस अवस्था को देख कर नारद मुनि इतना आनंद विभोर हो गए, इतना आनंद विभोर हो गए, नाचने लगे। उनके हृदय में भगवान का प्रेम तो पहले से ही है, लेकिन ऐसे रूप को देखकर नारद मुनि के आत्मा में ऐसा दिव्य प्रेम का अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब प्रेम तो प्रेम ही होता है, लेकिन आज जो प्रेम का अनुभव हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो हम आप रहेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे ऐसे आनंद में। अरे हमारा अगर स्कूल में फर्स्ट रैंक आता है ना तो हम सब भूल जाते हैं, क्या हुआ और क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ। थोड़े से आनंद में विवाह हो गया तो भी सब भूल जाते हैं, किसको क्या बोला था, फोन पे कब मिलना है, बच्चा हो गया तो पता नहीं, भूल जाते हैं सब कुछ, क्या क्या वादा हुआ था, इतना आनंद विभोरता से हम लोग विभोर हो जाते हैं। लेकिन भक्त कैसे होता है, इतना दिव्य आनंद जो कभी भी पहले अनुभव नहीं किया था वो आनंद प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सोच किसकी रहे हैं, हमारी और आपकी सोच रहे हैं। तो भगवान को स्पर्श किया और भगवान अपनी बाह्य अवस्था से पुनः जागृत हो गए, तो पहले वरदान मांगा कि इसी रूप में आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। अपना तो उद्धार कर लिया उन्होंने उनको दर्शन देखकर, उनका तो भाग्य था ही वो, लेकिन इतने सारे जीव, करोड़ों करोड़ों अबजो जीव जो है वो उनको भूलकर यहां पर इंद्रिय भोगों के प्रयास में अपने जीवन को कष्ट के सागर में डुबा रहे हैं, उनका क्या होगा, ये उनकी याद आई। तो कैसा होता है ना, भक्तों के हृदय में अपने आनंद के ऊपर लोगों की करुणा होती है, लोगों की करुणा नंबर वन पे होती है, बाद में अपनी खुशी और अपना आनंद और अपना प्रेम होता है, और अपना प्रेम प्राप्त करने के बाद भी करुणा उन पर हावी हो जाती है, हमेशा उनकी करुणा जो है उस पर, द कंपैशन इज ओवरवेलमिंग कंपेयर टू द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड एक्सटेसी इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। इसलिए नारद मुनि इतने अति आनंद का अनुभव करते समय भी जगन्नाथ जी को बोलने को नहीं भूले कि आपको इसी रूप में कलयुग में आना है, ताकि इतने सारे पतित जीव केवल आपको जब देखेंगे ना, केवल देखेंगे तो भी सारे उनके पाप नष्ट होकर उनके हृदय में ऐसे ही प्रेम की ज्योति जलेगी जो मेरे हृदय में आज जली हुई है, और आपका प्रसाद खाएंगे और सभी प्रपंचों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त करेंगे। यह है सेवक का भाव। सेवक जो होता है ना, वो हमेशा दूसरे के कल्याण की सोचता है, और जो दूसरे के कल्याण की सोचता है उसका कल्याण भगवान करते हैं। जो खुद की कभी नहीं सोचता है, खुद को कष्ट प्राप्त करके भी दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहता है, उसका जो क्या कहते हैं ना, योग और क्षेम भगवान स्वयं देखते हैं। जो खुद का क्षेम और योग में लगा हुआ है उसका क्षेम भगवान नहीं देखता, वो सोचता है कि मैं काबिल हूँ, तो भगवान बोलते हैं ठीक है देख लो अपना क्षेम और कुशल कैसा करना है। लेकिन जो दूसरों के हित में लगा हुआ है, जो दूसरों की सेवा में लगा हुआ है, उसका हित जो है वो भगवान स्वयं देखते हैं। वो भगवान का खाता जो है ना, वो जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, वो भगवान ने अपने पास रखा है। इसीलिए जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो भगवान ने क्या सेवा लिया, जो सारे संत लोग आएंगे ना उनके चरण धोने का सेवा मैं लूंगा, सब सेवा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया था। भगवान ने क्या किया, जो सभी दुनिया के लोगों की चिंता करते हैं, उनके कल्याण के विषय में सोचते हैं, उनका हित देखते हैं, उनके लिए अपने मराठी में कहते ना, त्यांचा करता थे अपना जीवन झिझवतात, जो अपना जीवन उसके लिए समाप्त करते हैं, मतलब क्या खर्च करते हैं, जीवन का व्यय जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए वो करते हैं, ऐसे लोगों के चरणों की मैं धूल लूंगा, ऐसे चरणों को मैं धोऊंगा। तो भगवान ने अग्रस्थान में वहां बैठकर दरवाजे पर जितने साधु आए सबके चरण धोए और अपने दिव्य पीताम्बर से उसको पोछा। उन्होंने, उनको पता नहीं भगवान का पीताम्बर क्या चीज है, उस पीताम्बर से उन्होंने सब भक्तों के चरण धोए, क्योंकि जो सबका कल्याण करते हैं उनका कल्याण भगवान देखते हैं, उनकी सेवा में वो आतुर रहते हैं। तो रही बात छोटी सी कि पुंडरीक के इस दिव्य सेवा के अंदर एक बहुत गहरा मैसेज हमारे लिए छुपा हुआ है। अभी देखते हैं, अभी आपके अंदर कितनी यहाँ पर माताएं बैठी हैं, कितने पिता बैठे हुए हैं। आप जानते हैं, जब बालक को आपने जन्म दिया है, हमने भी जन्म दिया है, कितना बालक का ख्याल रखते हैं, दिन रात जगते हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है उसके लिए, 24 hours 24/7 कोई उसके लिए अप्रिसिएशन मिलता नहीं दिन हर रोज़ के लिए। बेटा कहता नहीं कि आपने टट्टी पेशाब साफ किया, थैंक यू मामा, ऐसा बोलता नहीं है, वो तो रोते रहता है, सोते रहता है। और कई ऐसे कार्य होते हैं जो माता और पिता करते रहते हैं, खास करके माता, जो रात को बालक सोया हुआ है, हाँ कोई बिच्छू आता है वहाँ पर समझो, या कोई मच्छर आता है, या कोई कॉकरोच आता है, तो झट से जाके पकड़ कर उसको बच्चे से अलग कर देते हैं, बच्चे को जगाते नहीं है, बेटा पता है क्या तुम्हारे लिए मैं क्या किया, अभी तुम्हारे लिए मैं मच्छर को हटा दिया, तुम्हारे लिए मैंने सांप को मार दिया, तुम्हारे लिए मैंने बिच्छू को हटा दिया, कभी भी नहीं बताते हैं, सुबह उठने के बाद भी बच्चे को बताते नहीं है, या बच्चा बड़ा होने के बाद पूरा लिस्ट बताते हैं, इस फलाना तारीख को 1 जनवरी को मैंने बिच्छू मार दिया तुम्हारे लिए, 5 अप्रैल को मैंने सांप मार दिया और जन्माष्टमी के दिन मैंने बारिश से आपको बचाया, कितना सारा काम किया है जो बच्चे को पता ही नहीं है, किस किस संकट से माता ने मुझे बचाया है। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है, जब उसका विवाह होता है, तो माता पिता का वो दुर्लक्ष करना आरंभ कर देता है, क्योंकि हमको याद आ रहे थे ना, वो स्मृति विस्मृति भगवान के द्वारा प्राप्त है, हमको याद भी रखते हैं तो भूल भी जाते हैं, इच्छा के अनुसार सब भगवान हमें उसका फल देते हैं। तो इतना सारा माता पिता का हम पर ऋण है, गुरु महाराज को प्राप्त करने के लिए पहले भी माता पिता से संस्कार प्राप्त होते हैं हमको, होते कि नहीं होते, गुरु प्राप्त होना चाहिए, ये बुद्धि आती कहाँ से है, तब तक वहाँ तक पहुँचाता कौन है हमको, जो दो महीने का बालक है जो हाथ पांव मार रहा है और टट्टी पेशाब कर रहा है, पता नहीं कौन से छिद्र से कौन सा द्रव्य निकल रहा है उसको, उसको क्या वो बुद्धि होती है क्या कि मुझे गुरु प्राप्त करना है अभी? वो जब उसके योग्य होता है, उसका दिमाग मेंदू उसका जो मस्तिष्क है उसको वहाँ तक लाता कौन है और लाने तक उसको संस्कार देता कौन है? वो माता देती है, पिता देते हैं, पिता सहायता करते हैं, माता प्रत्यक्ष संस्कार देती हैं। और वही जब शरीर से अपने आप सक्षम हो जाता है तो उसी माता को दुर्लक्ष करना आरंभ देता है। वही बालक उस माता का माता को 50 प्रश्न पूछता है, ये क्या है वो क्या है, रास्ते में चलते हुए 50 चीज़ों को पूछता है, ये क्या है वो क्या है, कभी कभी दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार 50 बार उसी चीज़ को पूछता है, ये क्या है ये क्या है ये क्या है। और हर बार बड़े प्रेम से और बढ़ते हुए प्रेम से, वृद्धि होते हुए प्रेम से उसी प्रश्न का बड़े ही प्रेम से माता जो है उत्तर देती रहती है। कोई ऐसा बोलते खिटखिट क्या है, बंद करो अभी तुम्हारा मुंह जरा, ये लो मुंह में वो लगा देते क्या उसको बोलते ना चूसने का, क्या बोल निपल, लो चूसो इसको, मुंह बंद रखो अपना। ऐसा नहीं करते हैं। कितना बार एक अभी देखो हम ट्रेन में कल आ रहे थे, 4 घंटा वो हमारे सामने एक माता बैठी थी और बच्चे को इतना सा जो खिचड़ी है वो खिलाने का प्रयास कर रही थी 4 घंटा, और बच्चे ने उसका आधा भी नहीं खाया 4 घंटे में। वो इधर खेल रहा है उधर खेल रहा है, उसके पीछे भाग रही है, इधर भाग रही है उधर भाग रही है। लेकिन माता कभी थक नहीं जाती है, जा मत खा, लगेगी भूख तो आएगा फिर रोते हुए। ऐसा बोलते कि माता कोई देखे, आप में से भी कोई नहीं रहेगा ऐसा, कितना भी कष्ट होगा तो भी आप लगते रहे लगे रहेंगे उसके पीछे। और वही लड़का जब बड़ा होता है माता पिता भूलने लगते हैं कि बेटा मैंने गोली लिया था क्या, तो आपने खुद उसको गोली दिया है। वो बेटे को पूछ रही है कि मैंने सुबह का गोली लिया क्या, अरे मामा तुमको मैंने गोली दिया ना, अभी कितनी बार पूछोगे। कुछ देर बाद बोलेगी बेटा मैंने सुबह का गोली लिया क्या, अभी बस भी करो, अभी बंद करो मुंह अपना, अभी तुमको दिया 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 तुमको मैंने गोली, और पूछ के मुझे तंग मत करो, लिख के देखो कागज में कि मैंने गोली खाया सुबह का। ऐसा सब लोग करते हैं, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन वो माता जब आप आधा चम्मच खिचड़ी खाने को तैयार नहीं थे, आपके पास 50 घंटा घूम रही है वो खिलाने के लिए, और आप 50 बार ये पूछ रहे हैं ये क्या है वो क्या है, तो उसको 50 बार बता रही है उसका उत्तर क्या है। तो अगर हम पंढरपुर में आए हैं तो हमको पता होना चाहिए कि पंढरपुर का एक एक और रहस्य भी यह है कि हम सब लोग अपने माता पिता की देखभाल करने को सीखें, क्योंकि इस माता पिता की सेवा में एक और स्वार्थ भी छुपा हुआ है जो कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है। वो कैसा है कि अभी आप अपने माता पिता को दुत्कार रहे हो, आपके बच्चे भी देख रहे हैं जिनको आप इतना प्रेम कर रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो, वो जो आप उनकी देखभाल कर रहे हो वो भी साथ में देख रहे हैं संस्कार के रूप में कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और आप ही उनके लिए टीचर हो अपने एक्शन के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, है ना। तो वो समझेंगे कि माता पिता से ऐसे व्यवहार होना चाहिए। तो जब वो बड़े हो जाए और आपने अपने माता पिता का अगर दुर्लक्ष किया है तो वो भी जो उन्होंने देखा है उसी को अपनाएंगे और माता पिता का दुर्लक्ष करेंगे, मतलब आपका दुर्लक्ष करेंगे। तब आपको याद आएगा कि मैंने मेरे माता पिता को कितना कष्ट दिया था। एक एक माता जो होती है वो 5-5, 6-6 बच्चों को संभालती है, और जब बुढ़े होते हैं माता पिता तो 5 बच्चे झगड़ते हैं कि किसके घर में रहोगे तुम, 2 महीना मेरा हो गया अभी, कोटा मेरा पूरा हो गया, दूसरे के घर जाना है आपको। तो वो लेने को आता नहीं, ये छोड़ने को जाता नहीं, वो माता पिता को लग रहा है कि मुझे अभी जाना है, ये लोग अभी परेशान हो गए हमारे होने से, और वो सोच रहा है कि 2 महीने मेरे पास रहेगी, अभी 2 महीने के कब जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हमको जाना था कश्मीर जाना था, हमको माथेरान जाना था, लोनावला जाना था, लेकिन मैया आ रहे हैं ना, अभी सारे प्रोग्राम फ्लॉप हो रहे हैं, अभी IPL की मैच भी चल रही थी तो उसको अभी हमको देखने को नहीं मिलेगा, उसकी देखभाल में टाइम जाएगा ना बहुत सारा। ये सारे विचार चलते रहते हैं। हम बरसाना में कैंप कर रहे थे तो बरेली वाले आश्रम के एक हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पर रहते हैं, मुरारी ना कृष्ण मुरारी जी, वो बड़े उनकी अभी 80-85 साल की उम्र हो गई है, बहुत अच्छे भक्त है राधा रानी के, और कई साल से वहाँ पर रहते हैं वो। तो उनको ना थोड़ा दिल का दौरा जैसा पड़ गया कैंप के बीच में, तो हमारे डॉक्टर गए उनको देखने, हमारा उनका अच्छा प्रेम का संबंध है, हम देखने गए उनको। तो हमने कहा कि उनके बेटे को बुला लो आप, तो बेटे को फ़ोन किया तो बेटे ने क्या पूछा, अर्जेंट है क्या, इमरजेंसी है क्या, तुरंत आना होगा? तो हमने कहा हाँ आना होगा, पता नहीं भाई कितने दिन के मेहमान हैं। ठीक है, वो आ गए, मजबूरी से आ गए, और आपको क्या बताऊं, उनके सामने ही हमसे पूछ रहे हैं कि अभी कितने दिन जिंदा रहेंगे ये। पिताजी ऐसे महान संत हैं, सब कुछ छोड़कर ब्रज में रह रहे हैं, उनके चरणों की धूल लेनी चाहिए। और वो लड़का जो है वो कह रहा है कि मैं अभी तुरंत जा सकता हूँ कि अभी मुझे रहना पड़ेगा यहाँ पर। वो सब अपने लीव का गिनती कर रहा है माता पिता के लिए। इतना दुख हुआ मुझे सुनकर। आप सोचिए, हमें दुख हुआ, हमारा कोई कंसर्न नहीं उसके अंदर, लेकिन जो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, जिन्होंने उसको बाल पोस के बड़ा इतने लायक बना दिया है, उसको सुनाई पड़ा तो उसको क्या दिल में लगा होगा। इतने हम लोग कृतज्ञ हो गए हैं कि माता पिता का श्रम और दूध को भी भूल गए हम लोग। इतना बड़े विद्वान हो गए, इतने सक्षम हो गए, धनवान हो गए, ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये शरीर किसकी वजह से प्राप्त हुआ है? इसका पोषण किसने किया है? इसको संस्कार किसने दिए हैं? सब भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण। तो हम सब लोग अगर अपने आप को भक्त कहलाते हैं, तो भक्त का मतलब ये नहीं कि वो सब ऋण से मुक्त हो। हम लोग भागवत का श्लोक निकाल के आपको दिखाएंगे। देखो भागवत में लिखा है, देवर्षि नृणाम तृप्ताम, सब बड़ा श्लोक लिखा है भागवत में कि देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, समाज ऋण से भक्त मुक्त हो जाता है। अरे लेकिन कौन सा भक्त है? वो शुद्ध भक्त है, तभी मुक्त हो जाता है वो। हम लोग अपने अपने अनुकूल श्लोक निकाल कर उसको कोट करते रहते हैं, लेकिन हम लोग वो लायक के भक्त नहीं है जो ऋण माता पिता के ऋण से और देव के ऋण से और समाज के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हम लोग अभी नौसिखिया भक्त हैं, हमारे अंदर बहुत विकार है अभी, हमको सारे कर्तव्यों को निभाना है। और अगर हम भक्ति मार्ग, क्या प्रभुपाद जी कहते थे, मेरा इस्कॉन मूवमेंट जो है ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन मूवमेंट है, इट इज नॉट जस्ट हरे कृष्ण मूवमेंट कि जो लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, सेवा करते हैं और प्रसाद खाते हैं, पाप नहीं करते हैं, इतना ही सुपरफिशियल हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट नहीं है। हमारा जो हरे कृष्ण मूवमेंट है ये कल्चरल रेवोल्यूशन है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हाँ, ये जीवन की एक पद्धति है, जीवन की पद्धति को प्रभुपाद सिखा रहे हैं। और जीवन की पद्धति का मतलब क्या है? सारे कर्तव्यों को निभाना है, सारे व्यवहारों को आदर्श रूप में निभाना है। किसी से पैसे लिए तो टाइम पे पहुंचा चुकाना है उसको, किसी को वादा किया है, वचन दिया है तो उसको पूरा भी करना है। प्रभु रामचंद्र ने भी यही सिखाया था कि मर जाएंगे लेकिन ये वचन को नहीं तोड़ेंगे, इसको कल्चर कहते हैं। दुखी आदमी को सहारा देना, ऐसे नहीं कि हम यात्रा में आए हैं तो बस में सब लोग खिड़की की सीट को पकड़ने के लिए तड़प रहे हैं और बड़े बूढ़े को पीछे छोड़ रहे हैं और खुद खिड़की पकड़ के बैठे और हिलने को तैयार नहीं। ये हमारा कल्चर नहीं है। महाप्रभु सिखाते हैं कि सबसे पीछे अपने आप को रखना है, प्रसाद में या कोई प्रिविलेज हो तो उसमें, या कोई लाभ हो तो उसमें। ये कल्चर जो है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की नींव है। और जब ये कल्चर हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग कृष्ण भावना को स्वीकार कर पाएंगे। कृष्ण भावना उसी जमीन पर अच्छी तरह पनपेगी जिस जमीन पर ये संस्कृति और अच्छा व्यवहार जो है, एटिकेट्स जो है वो बने हुए हैं, इसी जमीन पर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो फसल है वो वृद्धि प्राप्त करेगा। आए समझ में आपको? कृष्ण कॉन्शियसनेस उसी हृदय में बढ़ेगी जिसमें ये व्यवहार की जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो बनी हुई है। हम लोग सब लोग कृष्ण भावना के नाम से हमारे सारे कर्तव्यों को छोड़ देते हैं और उसका जस्टिफाई भी कर देते हैं कि हमारे रिश्तेदार ऐसे, हमारे माँ बाप ऐसे, तो हम लोग नहीं करना चाहते उनकी देखभाल। लेकिन हम लोग कितने भी बड़े संत हो गए फिर भी माँ बाप की देखभाल करना हमारा फर्ज है, चाहे वो पापी क्यों ना हो हमारे दृष्टि से। क्योंकि हम लोग जैसे हरे कृष्णा बन जाते हैं हमको अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते, इतने हम लोग बार बार दोहराते हैं हमने चाय कॉफ़ी भी छोड़ दिया है। लेकिन हमको सबको पता होना चाहिए चाय कॉफ़ी छोड़ना, लहसुन प्याज छोड़ना, ये तो शुरुआत है केवल, दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ बिकमिंग ह्यूमन। चाय कॉफ़ी छोड़ने से हम लोग महान संत नहीं बन जाते हैं, उससे केवल मनुष्य बन जाते हैं, उसके आगे जाकर भक्ति का शुभारंभ होता है। इसलिए अपने आप को बड़े मानने लगते हैं। और माता पिता अभी भी चाय पे रहे, क्या करें अभी चाय पीते, मानते नहीं, हमने अलग पॉट रखा है उनके लिए। अरे वो लोग चाय पीते तो आपको दूध पिलाया उन्होंने अपने शरीर का, उसका क्या? आपको थोड़ी, आपने टट्टी पेशाब किया इसलिए आपको उन्होंने त्याग नहीं दिया था, उस समय रखा था आपको, बड़ा किया था। तो ये सब जो संस्कार है ये भक्ति के मूल आश्रय हैं। हमारे राजेश तलवार जी थे, रघुनाथ प्रभु, उनके घर में एक बार भोजन करने गए थे तो उनका अमृतसर से फ़ोन आया माता का, तो उन्होंने फ़ोन लिया और फ़ोन लेने के बाद में वो रोने लगे फ़ोन पे। ये जाहिर था कि माता भी वहाँ से रो रही थी, इतना क्लियर था, हमको नज़र आ रहा था। बहुत देर तक ये रो रहे हैं, वो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं प्रेम से, वो कुछ सुन रही है, वो बोल रहे हैं, फिर फ़ोन रख दिया और आ गए। तो हमने कहा क्या हुआ प्रभु जी? नहीं, वो माता का फ़ोन आया था। तो हम लोग बड़े प्रभावित हुए उस दृश्य को देखकर। तो हमने उनको इंक्वायरी किया कि प्रभु जी कैसे आपका ये, बहुत अच्छा लगा हमको। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे मुझे मेरी माता का फ़ोन आने पर रोते हुए देखते हैं तो कल जब मैं बुढ़ा होऊंगा मेरा फ़ोन आएगा तो भी वो भी रोएंगे, क्योंकि मैंने मेरे उदाहरण से उनको वो कल्चर दिया है। वो देख रहे हैं कि मेरे पापा अपनी मामा का फ़ोन आते हैं तो फ़ोन पर रोते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, कितना प्रेम है उनका अपनी माता के ऊपर, और माता का भी उनका कितना प्रेम है। जब वो बड़े हो जाएंगे और मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तभी मेरे लिए भी रोएंगे, क्योंकि जब हम खुद देते हैं ना तो हमको प्राप्त होता है, बिना दिए कुछ प्राप्त नहीं होता। हमने अगर माता पिता को केयर दिया है तो हमें हमारे बच्चों का केयर प्राप्त होगा, हमने उनको ठुकराया है तो हमको वो ठुकराना प्राप्त हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और अभी हमारे भी 50 उम्र हो गई है, अभी समझ देख रहे हैं हमारे जोड़ों में दर्द होने लगा है, पेट में दर्द होता है, एक जगह ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, आगे जाकर और स्थिति बिगड़ने वाली है। हाँ, और डर लगता है अभी, अपने बच्चे हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मैं 70 साल का हो जाऊँगा तो क्या होगा, चल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, तो बच्चे हाथ देने को आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे तुमने अगर तुम्हारे माता पिता को ऐसी सहायता किया है तुम्हें बच्चे तुम्हें सहायता करेंगे। लेकिन तुमने माता पिता को कब मेरे घर से जाती है, कब मेरा पेड़ा टल जाती है ये सोचते रहे होंगे तो तुम्हारे बच्चे भी यही सोचेंगे, एज अ रिएक्शन ऑफ आवर पास्ट कर्मा। अगर हमने ये सोचा है कि कब मेरी माँ मेरे घर से जाके मेरे भाई के घर में जाएगी, कब मेरा टर्न खत्म हो जाएगा, और जब तक रही थी तब उसका हमेशा अपमान ही किया है, उसको क्या बोलते हैं मराठी कहते हैं टाकून बोलने, मतलब ऐसा ही इंसल्टिंग ही बात किया उनसे, तो हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तब आपको सब कुछ याद आएगा, अरे जब मैं जवान था तो मेरे माता पिता को मैंने कैसे व्यवहार किया था। तो ये निजी स्वार्थ से भी अगर हम करेंगे ना तो भी अच्छा है, वो सेल्फिशनेस से करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। अपने कर्तव्यों को कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए भक्त बनने के बाद में, ये समझ कर कि हम सब कर्तव्यों से मुक्त हैं, सब ऋणों से मुक्त हो गए। रमेश बाबा जी से हमने एक बार प्रश्न किया था, बहुत सुंदर आपके लिए वो प्रसंग है, कि वहाँ पर एक रामजलाल शास्त्री पंडित जी रहते हैं बरसाना में, सन्यासी है वो, कोई उनको कोई मोह कुछ चीज़ का है ही नहीं, हमेशा जन कल्याण के लिए भागवत जी करते रहते हैं निरपेक्ष भाव से। इतना निरपेक्ष भागवतकार जो है वो उनके टाइम का सबसे पहले है, वो कोई खुद के लिए कुछ नहीं करते थे, जन देश विदेश में जाकर श्रीमद् भागवत जी का कल पठन करते थे लोगों के लिए। उनकी माता थी जमुना मैया, वो इतनी महान भक्त थी वो भगवान की, मैंने उसका जीवन अपनी आंखों से देखा है। एक ब्रजवासी शुद्ध भक्त कैसे होता है, गंवार दिखने वाली गांव की औरत है वो, लेकिन भक्ति के लिए कोई गंवार और पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, ऐसे शुद्ध भक्त थी वो। बरसाने में जन्म हुआ, बरसाने में रहने वाली, पूरा जन्म बरसाने में गया है, भक्तों की और गुरु की सेवा करते हुए गया है, परम श्रद्धालु उसका देहांत होता है। तो हमारा विचार कैसा है, अरे बरसाने की है वो तो भगवान के धाम गई होंगी ना वो निश्चित रूप से, तो श्राद्ध करने की जरूरत क्या है उसका, श्राद्ध किसका करते हैं, जो अभी यहाँ पर टिकने वाले हैं उनकी प्रगति धीरे धीरे हो जाए भगवान की ओर, इसलिए श्राद्ध करते हैं। वो बालक भी भक्त होता है तो उसके श्राद्ध करने का लाभ माता पिता को होता है। हाँ, पुत्र आयते इति पुत्रः, जो पुत नाम के नरक से अपनी माता पिता को बचाता है वही उसी को पुत्र कहते हैं, नहीं तो वो मूत्र के बराबर है, ऐसे माना गया है, शास्त्र का प्रमाण है उसके लिए। अभी ये तो ऐसी माता है जिन्होंने बरसाने में जन्म लिया है, संतों की सेवा किया है, पंडित जी रामजीलाल शास्त्री जैसे महान भक्त को जन्म दिया है, ये तो भगवत धाम ही जाएगी, फिर भी उनका श्राद्ध करते हुए हमने देखा उनको। तो हमने रमेश बाबा जी महाराज को पूछा कि महाराज जी ये इनको श्राद्ध करने की जरूरत क्या है, तो उन्होंने तुरंत भगवत गीता 3.25 कोट किया, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक कोट किया कि महान संत जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जन सामान्य के उदाहरण के लिए ये कर्तव्य करते रहते हैं। उनको पता है कि मेरी माता जो है वो भगवत धाम पधार चुकी है, कोई श्राद्ध बाध्य की जरूरत नहीं उसके लिए, लेकिन अगर महान भक्त अगर स्वयं श्राद्ध करना छोड़ देगा तो बाकी सब लोग उसका अनुकरण करेंगे, और ये पंडित जी ने अपनी माता का श्राद्ध नहीं किया तो हमारी माता मर रहेगी भाई, हम भी नहीं करेंगे। जिनके खुद की योग्यता नहीं है वैसी, और उसकी माता भी उस योग्यता की नहीं है, वो भी पंडित जी का उदाहरण देखकर श्राद्ध करना बंद कर देंगे। इसलिए महान लोगों को जन कल्याण के उदाहरण के रूप में इन सारे कर्तव्यों को, आदर्शों को निभाना पड़ता है, जरूरत ना होने पर भी। तो अगर हमको लगता है हम बड़े संत हो गए, हम सब ऋणों से मुक्त हो गए, अगर ऐसा है भी वास्तव में, फिर भी समझो, आप समझो हम सब लोग उस स्थिति में आ गए, अभी हम सबसे ऐसी अवस्था में वो श्लोक हमको लागू हो रहा है अभी, देव और पितृ और मातृ और सभी ऋणों से हम मुक्त हैं अभी वास्तव रूप में, फिर भी हमको वो करना चाहिए जनता के सामने एक आदर्श खड़ा रहने के लिए। क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, लोग हमारे हर कदम का अनुकरण करने लगते हैं, हमें चाहे अच्छा लगे ना अच्छा लगे। एक उन्नत भक्त को हमेशा लोग देखते रहते कि कैसे व्यवहार करता है ये। अर्जुन ने भी पूछा था भगवान कृष्ण को कि जो शुद्ध भक्त है वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे व्यवहार करता है। तो भगवान भी उसका वर्णन करते हैं कि वो उसके लक्षण क्या है, उसका कृति जो है वही उसके भक्ति का प्रमाण होता है, और उसके कृति के आधार पर ही लोग उसका अनुकरण करते हैं और आगे जाकर भक्त बनते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं तो हमारे पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण बने। केवल तिलक लगाकर हरे कृष्ण जप करने से सब कार्य सिद्ध नहीं होता, जब उसको व्यवहार और वैष्णव शिष्टाचार की जोड़ लगेगी ना, साथ मिलेगी, तब जाकर उस हरे कृष्ण महामंत्र के जप का परिणाम शुद्ध भक्त बनने में होगा। इसलिए आप हम लोग ये भी कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा आप लोगों के हर एक कृति को लोग निहार रहे हैं कि ये लोग कौन है, ये प्रभुपाद जी के संस्था के अनुयायी हैं। तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके अपना कोई प्रसिद्धि नहीं, यहाँ पर प्रसिद्धि तो प्रभुपाद जी का है, वो प्रसिद्ध हैं कि इनका हरे कृष्ण मूवमेंट है और इस हरे कृष्ण इनके प्रभुपाद जी के मूवमेंट के ये सब भक्त है। तो आपसे बड़ी ऊंची उम्मीद रखते हैं वो लोग, और 10-5 हमने अगर कैंप भी लगा लिए हैं तो उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हमारे प्रति, तो और आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप जब कैंप में आते हो ना, अनजान जगह पे जा रहे हो जिसको, जहां पर लोग आपको पहचानते नहीं है, अपने व्यवहार से आप श्रील प्रभुपाद जी का गौरव बढ़ा सकते हैं, केवल अपने व्यवहार से। जब आपका श्रेष्ठ व्यवहार लोग देखेंगे तो कहेंगे प्रभुपाद जी कितने महान होंगे, इनके अनुयायी इतने महान है, इतना व्यवहार इतना अच्छा है, इनका वाचा इनका वचन इतनी मिठास है उसके अंदर, इनकी सेवा इतनी बढ़िया है, तो वो कितने बढ़िया होंगे। अभी तो नहीं रहे वो, अगर काश हम उनको देखते तो कितना आनंद आता उनको देखकर। तो हमारे व्यवहार से हम उनका गौरव बढ़ा सकते हैं आज भी, और हमारे व्यवहार से, दुर्व्यवहार से उनका गौरव जो था उसको नष्ट कर सकते हैं हम लोग। तो कितना व्यवहार जरूरी है। लोग आपको आके देखते नहीं कि आप 16 करते हो कि 25 माला करते हो, चाय पीते हो कि नहीं पाते हो, आपको देखते नहीं, आपकी बात पर विश्वास करते हो कि हम चाय भी नहीं पीते हैं, कभी सुबह आपको देखते नहीं आके कि चाय पी रहे कि नहीं पी रहे। आपको मापते हैं केवल आपके व्यवहार को देखकर, और आपके व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं कि भक्ति जो है इनके हृदय में अंदर घुस गई है, इसलिए इनका व्यवहार ऐसे हो गया है, परिवर्तित व्यवहार है इनका। तो आइए इस पंडरपुर की यात्रा के अंदर जो माता पिता का सेवा का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है उसको हम समझें। पुंडरीक ने यहाँ पर उदाहरण साबित किया है, भगवान ने द्वारका छोड़कर यहाँ पर आकर कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, वो कितने महान होंगे पुंडरीक देखो, और वो भी ऐसे ही पतित थे पहले, हमारे जैसे ही थे, लेकिन संत के संग से उन्होंने इतना परिवर्तन पाया और ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सबके सामने खड़ा कर दिया है। भगवान नाराज नहीं हुए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्या समझते हो अपने आप को बड़े सेवक बन गए क्या, इतना दूर से मैं आया तो मुझे वेट करने को बोल रहे हो, व्हाट डू यू मीन, ऐसा नहीं बोला उन्होंने उनको। उसका भक्ति भाव देखकर भगवान भी खड़े रहने को तैयार है और खड़े हैं उनके लिए, वो कोई वरदान में डिस्काउंट नहीं दिया बाद में कि भाई तुमने मुझे वेट कराया इतना दिन, अभी मैं 2-4 वरदान कट करता हूँ तुम्हारी। अभी ऐसा नहीं पूछेगा तुमको क्या चाहिए, अब मैं जो देना है उतना ही दूंगा और चला जाऊंगा, मैं परेशान हो गया यहाँ पर, इतना देर वेट किया मैंने, इतना समय देने के लिए नहीं आया था मैं यहाँ पर, मैं बहुत बिजी था। ऐसे भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, वो व्यवहारी नहीं है, वो भावग्राही है, वो पुंडरीक के श्रेष्ठ भाव का ग्रहण कर रहे थे, वो देख रहे थे कितना भक्त का गौरव देख रहे थे, वो दिलो जान से उन्होंने इंतजार किया। और दिल भर भर के उनको कृपा किया, उनके ऊपर हर इच्छा की पूरी की। इसलिए हमारे लिए आज पंढरपुर धाम उपलब्ध है। अगर पुंडरीक ने अपने माता पिता की नहीं सेवा की होती ना, तो हम लोग पंढरपुर में नहीं बैठते आजकल, खिचड़ी बांटते और कंबल बांटते और मेडिसिन खर्च करते, साथ साथ में अपना भी उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि पुंडरीक ने वो वरदान मांगा था, यहाँ पर जो भी पापी अज्ञानी, हाँ जो ज्ञान विज्ञान रहित है, जो पापी जीव है, वो जब यहाँ पर आएगा तो केवल आपके दर्शन से, और दर्शन के ना भी हुआ तो इस धाम में केवल प्रवेश ही करने से, केवल धाम में आने से ही वो सब पापों से मुक्त हो जाना चाहिए, ऐसा वरदान मांगा उन्होंने। वो नहीं मांगा होता हमारा कैसे होता। एक भक्त काफ़ी है, प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा, एक चांद काफ़ी है रात में उजाला देने के लिए, हजारे चमचमाते हुए सितारों की जरूरत नहीं है। और ऐसे एक नहीं, अनंत भक्त हमारे जीवन में आते जाते रहते, कितना भाग्य है हमारा। तो उस भाग्य के उत्तरदायित्व में हम सबको हमारा वैष्णव शिष्टाचार को श्रेष्ठ करना चाहिए, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। व्यवहार जो है ना हमारा भक्ति का प्रमाण है, हमारी भक्ति कितनी गहरी हो चुकी है उसका व्यवहार प्रमाण है। और ये अभी आजकल का साइंस बताता है कि 70% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, मतलब क्या, देह बोली से 70% वार्तालाप होता है, 30% केवल बोलने से होता है। 70% आप कैसे वर्ताव करते हो उससे आप लोगों को बता रहे आप क्या हो। तो व्यवहार जो वैष्णव शिष्टाचार है वो ज़्यादा प्रचार करता है। प्रवचन देना आसान है, तो चार दो चार बुक पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया, तो क्या इसमें क्या है, जिसकी अच्छी मेमोरी है वो बोल सकता है, उससे ये साबित नहीं होता है कि कोई बोलने वाला श्रेष्ठ भक्त है। एक चर्च है उधर जर्मनी में, उधर सेंट फ्रांसिस का जन्म हुआ था, उस जगह का नाम है असीसी, हाँ उसको कहते हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। जर्मनी के बहुत बड़े संत हुए थे वो, क्रिश्चियन धर्म के। उन्होंने कहा है कि भक्त को 24 घंटा प्रचार करना चाहिए, जो अपने आप को भक्त समझता है उसको 24 घंटे प्रचार करते रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़ेगी तब बोलना चाहिए। हमको तो लग रहा था कि प्रचार करना मतलब दिन भर बोलते रहना, ए दो मिला उसको उपदेश करते रहना, इसका बोलते हैं प्रचार, कितने प्रभु जी कितने फायर्ड अप हैं, जो मिलता है उसको लेके बैठ जाते हैं, भगवान के बारे में बताना चालू करते हैं। लेकिन वो तो कुछ उल्टा ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 24 घंटा प्रचार करना चाहिए और जरूरत पड़े तब बोलना चाहिए। इसका मतलब जब नहीं बोल रहे हैं, जब जरूरत नहीं है, अपने व्यवहार से प्रचार कर रहे हैं, अपने उदाहरण से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और देख के उनको भक्त बन रहे हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा हमारा प्रचार होना चाहिए आदर्श व्यवहार के साथ में। और ऐसे आदर्श व्यवहार वाले भक्त ने जब मुंह खोलता है ना वो, और दो वाक्य बोलता है तो वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है। लोग कोट्स के लिए उसको लिख के सब छापते हैं सब जगह पर कि देखो सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा था, आज भी हम लोग उसको याद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा जिसका श्रेष्ठ व्यवहार है, वैष्णव व्यवहार है, उसके मुँह से निकलना लेके एक वाक्य भी ब्रह्म वाक्य बन जाता है, आने वाले युगों के लिए प्रमाण बन जाता है। तो आइए हमारे इस पंढरपुर के इस यात्रा के हाँ लाभ के रूप में हम पुंडरीक भक्त को, वैष्णव को और भगवान विट्ठल रुक्मिणी को ये प्रार्थना करें कि हमें दिखाओ भक्त मत बनाना भगवान, हमें सही भक्त बनाना, वो प्रेरणा देना और हमारे ऐसे ऐसा व्यवहार आप करवाना जो आपके गौरव को बढ़ाएं, हमारे गौरव को नहीं बढ़ाए, आपके गौरव को बढ़ाए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि आपका नाम हो जाए कि देखो ये मेरे भक्त हैं, ऐसा आपको कहने में गर्व होना चाहिए। और हमें कहते ना सुपरफिशियल दिखाओ भक्त मत बनाना, हमें गहराई से भक्त बनाना, ताकि भक्ति की गहराई हमको पता चले। और केवल दिखाओ यहाँ वहाँ के वचन बोलने में हमको रुचि नहीं होना चाहिए, हमें वैसे आचरण करने में रुचि होना चाहिए जो आपके और गुरु महाराज के गौरव को बढ़ाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रामाणिक भक्तों के संग में अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र बड़े ही प्रेम से जप करते रहेंगे और प्रामाणिक भक्तों के संग में सिंसियरली अगर सेवा करते रहेंगे तो ये मंजिल बहुत दूर नहीं। क्योंकि धाम में बैठे आप पुंडरीक जैसे महान भक्त के धाम में बैठे हैं, जहाँ विट्ठल भगवान खड़े हैं, चंद्रभागा बह रही है, सब लोग धूमधाम से हरिनाम कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाद ब्रह्म भूमि में आप खड़े हो, तो ये भाग्य जो है ना ये भगवान की परम कृपा है। तो इसलिए अगर हम प्रामाणिक हैं तो ये नामुमकिन नहीं है, और ये मुमकिन होने के लिए मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और भगवान विट्ठल के चरणों में, पुंडरीक के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो सब आप पर यही कृपा करें। हरे कृष्णा।